نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قال الله تبارك تعالى في المقام الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی ایک دولت دی. جب رمضان آتا ہے تو بہت سارے خیالات بھی ہوتے ہیں، ارادے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اتنا کچھ انسان کر نہیں پاتا جو کہ سوچا ہوتا ہے یا جتنا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ مواقع پر مواقع دیتا ہے. جیسے اگر آپ ایک ٹرین مس کر دیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری ٹرین آتی ہے، لیکن اگر بالکل ہی آخری ٹرین مس کر دیں تو پھر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں نیکیوں کے لیے بہت سارے مواقع رکھے ہیں. انہی مواقع میں سے ایک موقع رمضان کے آخری 10 دن ہے، جس کو ہم عشر اواخر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے بارے میں کیا تھا، آپ کی ازواج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں اور آپ کے اصحاب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمت باندھ لیتے تھے، عام دنوں سے زیادہ محنت کرتے تھے اور آپ اس آخری عشرے میں 10 راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور آپ کی زندگی میں جو آخری رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اور آپ ایک دفعہ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے اس کے بعد پھر شوال میں اعتکاف کیا. تو یہ وہ دن ہیں جس کو آپ کہنا چاہیے کہ بس اب رمضان کے دن بھاگ رہے ہیں، پورا مہینہ کچھ نہیں کیا. اور اگر آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں کہ سناؤ بھائی رمضان میں کیا ہوا، تو ایک آہ بھر کے کہتے ہیں کر نہیں سکے، سوچا تو بہت تھا لیکن جاب تھی، سوچا تو بہت تھا لیکن بیمار ہو گئی. تو یہ جو آخری دن ہے نا، یہ کہہ لیجئے کہ ایک مثال بھی دی ایک امام نے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا جو آخری راؤنڈ ہوتا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، تو اس میں کھلاڑی کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ سپیڈ کر لے، اب تو سفر ختم ہو رہا ہے، اگر اب میں ہار گیا تو میں پیچھے رہوں گا. تو رمضان کے یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ غفلت کے نہیں ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں اپنے آپ کو خالی کر کے صرف اور صرف اس سوچ میں رہنا چاہیے کہ میں اور آخری عشرہ. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، رمضان ہاتھوں سے نکل رہا ہے. پیغام کیا ہے کہ جاگ جائیں، نہ صرف یہ کہ اس کی راتوں میں جاگیں، اس کے دن میں بھی جاگیں. آخری عشرے کی تیاری کر لیجئے، جو ابھی تک نہیں کر سکے ابھی کیجئے. ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی الحمدللہ 2/3 گیا ہے، ابھی 1/3 آپ کے میرے ہاتھ میں. آج سے نیت کیجئے، آج ٹو ڈے، آج کا تو ہمارا گول بھی صبح کا یہی تھا نا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. تو آج ابھی سے بیٹھ کے یہاں اس محفل میں آنے کا یہ حق ادا کیجئے کہ ابھی سے ٹھانیے کہ میں نے اب آخری 10 دن میں وہ عبادت کرنی ہے جو میں پہلے پچھلے 20 دن میں نہیں کر سکی. پھر آپ نکل آئیے. کہاں سے نکلنا پڑے گا؟ افطاری کے مزوں سے نکلیے، عید کی شاپنگ سے نکلیں، لمبی نیند سے نکلیے، یہ سب بعد میں بھی ہو جائے گا. اب اس وقت اس لیکچر کو سننے کی بجائے اگر آپ میں سے کوئی جا کر کھانا پکانے لگے تو اس سے بڑی کوئی ناشکری اور ناقدری ہوگی. وہ کھانے تو کھاتے تھے، کھائیں گے، کھاتے ہی رہیں گے، لیکن یہ وقت پھر نہیں آئے گا. یاد رکھیے، کھانے، نیند، لباس، کپڑے ہمیشہ پورا سال ہم کرتے ہیں، لیکن رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نہیں پتا کہ دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں. ابھی بھی ہے، کریں کیا پھر؟ سب سے پہلی بات، نیت کریں کہ میں نے اس سال لیلۃ القدر کو پانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں ایک سب سے بڑی نشانی ہے یہ کہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے. اس رات آسمان سے فرشتے اترے ہوتے ہیں، ये जो कहते हैं ना, इन अंजल ना हुफी लैलतुल कद्र, बेशक हमने इसको लैलतुल कद्र में नासिल किया। तो लैलतुल कद्र इसको क्यों कहते हैं, इस पे उलमा कराम ने बहुत सारी तफसीर दी है। मसलन ये कि कद्र वाली रात है, ब्लेसड नाइट है। दूसरी एक राय ये कि नहीं, इस रात में जो इबादत करता है वो कदर वाला हो जाता है। जिस तरह आप कहते हैं ना, आपकी हमारे यहाँ बड़ी कदर है, हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये लैलतुल कदर के जू कदर, यानी इबादत करने वाले को अल्लाह ताला उसकी नज़र से देखता है। फिर इसकी एक तीसरी वजह यह है कि कदर का एक लफ्जी मान होता है तंगी, मन कुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, कुरान पाक में आता है कि जिसका रिस्क तंग हो। तो रात को लैलतुल कदर क्यों कहते हैं कि इस रात आसमान से इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जगह तंग हो जाती है। और आप देखिए कि नायतों में भी आप पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्री खैरु मिन अल्फी शहर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र जो है ये 1000 रातों से बेहतर है। और अगर आप देखें तो 83 साल 4 महीने बनते हैं अगर एक रात की इबादत आपको मुझे नसीब हो जाए। आपने 2 नफिल पढ़े, उसको 83 × 4 से ज़रब लगा लीजिए। 1 यूरो आप सदके में देते हैं तो वो आप सोचिए कि कितने हजारों यूरोस में बदल जाते हैं। इतनी कदर करता है अल्लाह ताला इस नेकी की। इस रात को खो देना, इस रात की कदर ना करना, इससे ज्यादा ना कदरी कोई नहीं है। किसी ने पूछा कि लैलतुल कदर कौन सी है, तो जिससे जवाब पूछा गया उन्होंने कहा कि हर वो रात जिसकी तुम कदर कर लो वो लैलतुल कदर है। लेकिन आज भी कई महरूम लोग होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, सो रहे होंगे, गफलत में होंगे, शायद उनको ये पता भी नहीं होगा कि आज की रात कितनी कीमती रात है। तो लिहाजा इन 10 दिनों में इबादत की तौफीक मांगे, ऐसी इबादत जिसमें हमारा इखलाक भी अच्छा हो जाए, जिसमें हमारी इबादत भी अच्छी हो जाए, हमारे रवैये भी अच्छे हो जाएं, हमारे मामले भी अच्छे हो जाएं। खाना कम से कम खाएं, इफ्तारी में इतना मत खाएं कि रात की इबादत मुश्किल हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हल्के पेट से इबादत होती है, बहुत बोझल पेट से नहीं होती। और फिर इसी तरह खुशी और खुदू भी आता है जब पेट कम होता है। फिर आप देखिए कि जब आप और मैं इसमें इबादत करना चाहते हैं तो इसकी एक चौथी वजह तो बहुत ही अहम है जो सोच के, ये फैसलों की रात है, लैलतुल कद्र। कद्र से ही लफ्ज़ तकदीर है। हमारे कल्चर में एक मारूफ बात क्या है कि शाबान की 15 को किस्मतों के हाल मालूम किए जाते हैं, ऐसे ही है ना, जिसको शबे बरात भी कहते हैं, शाबान की कहते हैं। हालांकि अगर आप देखें, और हमारे जहन में जो ही लफ्ज़ लैलतुल कदर आता है तो बस हम सूरत कदर को कहते हैं, हालांकि सूरत दुखान की शुरू की 6 आयात जो हैं वो आपको मुझे किस बात की खबर देते हैं। आइए मैं सिर्फ उसका तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ, और आपको क्या बता कि आज की रात आसमानों पर मेरे और आपके लिए क्या फैसले हो रहे हैं। जो मांगना है मांग लें, अल्लाह की रहमतों को समेटने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। क्या दलील है आज की रात के फैसलों की रात होने के, सूरह दुखान की आयतें इब्तदाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम हरूफ मुकत्तात है, वल किताबिल मुबीन, बयान करने वाली किताब की कसम, कुरान की कसम, जो चीज़ों को खोल खोल कर बयान करता है। और हकीकत यह है कि जब तक कुरान खोलेंगे नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी वो बात आएगी नहीं जो दलील के साथ होती है। फिर फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारका, हमने इस कुरान को लैलतुल मुबारका में नाजिल किया। अब आपको सबको पता है बचपन से सुनी हुई बात कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ। 27 रमज़ान की वो रात थी जब नबी सल्लम पर पहली वही इक़रा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक नाजिल हुई। उससे नज़ूले कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। और अगर नज़ूले अव्वल ले लीजिए तो लौहे महफूज से पहले आसमान पे जो कुरान नाजिल हुआ था पूरे का पूरा, वो भी रमज़ान में हुआ था। आप कहते नहीं कोई और भी दलील है, तो कुरान में मौजूद है, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और याद रखिए कि रमज़ान की खूबी ही ये है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। रोज़ा तो आप कभी भी रख सकते हैं, लेकिन ये कुरान के नज़ूल का महीना है, तो आप कह सकते हैं कि लैलतुल कद्र का दूसरा नाम लैलतुल मुबारक भी है। इस रात की बरकतें, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, हम हैं बेशक डराने वाले, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इस कुरान को कोई ऐसे ही नहीं नाजिल कर दिया। इस कुरान के नज़ूल की वजह क्या है कि हम लोगों को डराना चाहते थे। आप देखिए कि लोग जब गफलतों की नींद सो जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह को डराने के लिए किसी को भेजना पड़ता है। आजकल आप हर रोज़ ही इसका एक्सपीरियंस करती होंगी, फजर के लिए खाना पकाना आसान है, सोतों को उठाना मुश्किल होता है। तो जब कोई नहीं आराम से उठता तो फिर आप ज़रा सी जोर की आवाज़ से उठाते हैं। अल्लाह सुबहाना तआला भी सोई हुई कौमों को जगाने के लिए कुरान को नाजिल करते हैं। तो इससे ये बात भी पता चल गई कि ये कुरान किस लिए आया है, ताकि लोगों को जगाए। अल्लाह ताला से ये दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें भी गफलतों की नींद से निकाल दे। फिर उसके बाद
हाँ
देखिए कि अगली आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या फरमाया, फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम। इसमें फीहा, इस रात में, युफ्रकु अलग अलग किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, अलग अलग करके, जैसे आप चीजों को अलग अलग करते हैं ना, कुल्लु अमरिन हर काम, हकीम हिकमत वाला, यानी अल्लाह ताला मेरी आपकी किस्मत के मामलात को इस रात में डिसाइड करते हैं। अम्र मिन इंदिना, हमारी तरफ से एक काम या एक फैसला, इन्ना कुन्ना मुरसलीन, और हम हैं बेशक भेजने वाले, रहमत में रब्बी का, ये रहमत है आपके रब की, इन्ना हुवा समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। क्या पता चला इन आयात से कि आज की रात शायद आपकी मेरी तकदीर के बनने की रात हो। आज शायद अल्लाह ने आपका मेरा नाम जहन्नमियों की सफ से निकाल कर जन्नतियों की सफ में निकालना होगा। क्या बड़ी बात है। तो लैलतुल कद्र इसलिए कि इस रात फैसले होते हैं। मांगिए अल्लाह से, कितना मांग सकते हैं, मांगे अपनी खैर, मांगे अपने बच्चों की, मांगे अपने प्यारों की, मांगे उम्मत मुस्लिमा की खैर मांगे, क्योंकि जब एक दफा कलम चल जाता है तो फिर उसको दोबारा बदलना मेरे आपके बस में नहीं होता। तो लिहाजा आज की रात के करने वाले कामों में क्या, अपने बच्चों की किस्मत की भलाई मांगे, अपने माँ बाप की भलाई मांगे, और सब उम्मत मुस्लिमा की मांगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुझे क्या पता कि क्या है लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्री खैरु मिन अल्फी शहर, लैलतुल कद्र 1,000 रातों से बेहतर है। यानी अगर आप 2 नफिल पढ़ें और आप 1,000 रात तक 2 नफिल पढ़ें तो कौन जीता है उतना। रिवायत में आता है कि उम्मत मुस्लिमा के बारे में ये एक बोनस है। कुछ सहाबा कराम ने इस बात का इजहार किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली उम्मतों की तो उम्रें बड़ी लंबी थी, तो वो तो इतना जिए, जब इतना जिए तो इतनी नेकियां की। देखिए जरा सोच, हम कहते और जीते, कुछ और कमा लेते, और कुछ 4 घर बना लेते, कोई और बच्चों के लिए जायदादें छोड़ते। नहीं, सोच क्या थी, नजर किस चीज पे थी, नेकियों पे। तो कहते थे वो तो लंबी उम्र पा गए तो उन्होंने नेकियां कर ली, हमारा क्या कसूर, आपने हमें दी ही थोड़ी उम्र है तो हम क्या करें। उस पे ये आयतें नाजिल हुई थी कि हमने इस रात को 1,000 रातों के बराबर कर दिया, कि जाओ तुम इस रात की इबादत कर लो, तुम्हें हम 1,000 रातें इबादत करने का बदला देंगे। इससे क्या पता चलता है कि आज की इस रात में खूब नेकियां करने की जरूरत है। किस तरह से करें, क्या करें, उसको भी इंशाल्लाह अभी मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूंगी, लेकिन एक दफा पहले अपने दिल को जमाएं इस बात पे कि आज की रात सोने की रात नहीं, आज की रात खोने की रात नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, तनज्जुलुल मलाइकतु वर रूह, नाजिल होते हैं फरिश्ते और जिब्राइल। ये जो रूह लफ्ज है ना, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम है, क्योंकि ये वही भी लेकर आते हैं जिसको रूह कहा गया कुरान में, सूरत बनी इसराइल में, और माँ के पेट में जो रूह डालते हैं बच्चे में, वो भी जिब्राइल डालते हैं। और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह जो डली थी मरियम के बतन में, वो भी हजरत जिब्राइल ही के थ्रू डली थी। और हकीकत है कि कुरान जिस्म में इसी तरह काम करता है जैसे बदन में रूह होती है। बेसनी रब्बी हिम, उतरते कैसे, रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अमरिन, हर काम के लिए। ये मिन कुल्ली अम्र में आपकी मेरी तकदीर की बात है। और हदीस में आता है कि इतने फरिश्ते उतरते हैं उस रात में कि अगर इंसान उसको फील करे, महसूस करे, तो उसको अपने इर्द गिर्द हर तरफ फरिश्ते दिखेंगे। और आप देखिए कि हदीस में आता है कि लैलतुल कदर में फरिश्ते उतरते हैं, हर एक की बख्शिश कर दी जाती है सिवाय उसके जिसके दिल में कीना हो, जिसने दिलों में गंदगी पाली हुई है, जिसने बुग़्ज़ पाला हुआ है। फिर आप देखिए, सलामुन हिया हत्ता मतलअ फजर, सलामती है मतलअ फजर तक। अब यहाँ थोड़ी सी गलती है हमारे कल्चर में, ये मैं आपके साथ ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। आप देखिए कि हमारे कल्चर में अमूमन क्या सोचते हैं, चलिए जी ताक रात है, आज 21वीं रात है, कब रात शुरू करते हैं, खाया पिया, फिर मगरिब पढ़ी, फिर आराम किया, फिर और चाय पी, जब तरावी के बाद का वक्त, जिस तरह आखिरी रात का हिस्सा शुरू होता है, जैसे इस वक्त का हिस्सा आप देखिए कि 1:22 है ना। अब हमारे अमूमी कल्चर में लोग रात का इंतज़ार करते हैं जागे, और जागा नहीं जा रहा, इंतज़ार करें, अच्छा सारे मिल जाएं, फिर 2 नफिल पढ़ते हैं, अच्छा ज़रा सारे मिल जाएं, कोई सलातो तस्बीह पढ़ रहा होता है, कोई कुरान पढ़ता है। कब से इसका आगाज़ है, आप और मैं, अगर आज की रात लैलतुल कदर है तो हम इसका कितना हिस्सा गुजार चुके हैं, आपको अंदाज़ा, सूरज गुरूब होने से लेकर यानी मगरिब की नमाज के शुरू से ही रात शुरू होती है। यानी ये रात शुरू हुए इस वक्त अगर आप देखें तो आज गालिबन क्या टाइम था,
10 बजे
10 बजे कल गए, तो 11, 12, 1, और 1:20, 3 घंटे 22 मिनट गुजर चुके हैं इस रात की रहमतों को शुरू हुए। ये बहुत बड़ा मुगालता है कि हम इसको मिडनाइट से शुरू करते हैं, और आप देखें कि जो अभी के ये 3.5 घंटे गुजरे हैं, इसमें इबादत करनी आसान थी या बस आना है? अब तो नींद के झोंके भी आएंगे, अब तो ये भी मसला है कि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, अब तो मर्दों ने काम वालों ने जाना है। अगर हमने पहले से ये प्लान किया हो तो मगरिब से लेकर ये 3.5 घंटे भी हमारे ज़ाया ना हो, अगर ज़ाया किसी के हुए हैं तो। लिहाजा शुरू तब तक और ख़त्म कब? मतलईल फजर, आखिरी वक्त तक। अब करना क्या है, कैसे करना है, इसकी कुछ अमली चीज़ें हम देख लेते हैं। चंद मिसालें हमारे असलाफ की। असलाफ कौन होते हैं? इंसेस्टर्स, बुजुर्ग, यानी अल्लाह के नबी, सहाबाए कराम। उन्होंने इस रात को क्या किया? कोई ख़ास तरीका वजह नहीं किया। हमारे कल्चर में मुख्तलिफ नाम हैं, कभी इसको शबीना कहा जाता है, कभी इसको कुछ और भी नामों से दिया जाता है। तो पहली बात यह कि ये बात मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबा करते थे। सहाबा कराम इस बात की गवाही देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत 13 रकत से ज़ायद नहीं होती थी, जिसमें 3 वितर कर लीजिए, 2 सुन्नतें कर लीजिए, 8 नफिल तहज्जुद के, टोटल 13, 11 भी पढ़ते थे। अब हमारे कल्चर में ये जो एक बात है कि तरावी और चीज़ है और रात की तहज्जुद और चीज़ है, ये भी ना समझिए, समझ लीजिए बहुत आसान हो जाएगी इबादत करनी। मैंने लोगों को 100-100 नफिल भी पढ़ते देखा है ताक रातों में। क्यों भाई? लाइन लगी हुई है, एक सीधा रुकू नहीं हुए, दोबारा सजदे में हुए। क्या मिला आपको इससे? आप देखिए ना, मैं बोल रही हूँ, अगर मैं इस तरह बोलने देता तब तक तेज तेज बोलूँगा, मैं ज़्यादा बता दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। थोड़े ही नफिल हैं, उसको लंबा कर लेते थे। अगर आप रोज 8 तरावी पढ़ते हैं ना, मस्जिद में जाके पढ़ी, 4 तरावी मस्जिद में इमाम साहब के साथ पढ़ ले, घर आ जाए, जो 4 नफिल है ना घर में आके सुपारा खोल के पढ़ ले। अभी हम सब ने बच्चे के साथ पढ़ी ना, मजा आया आपको? कितना अच्छा लग रहा था। अब अगर आपकी रात लंबी, अब यहाँ तो रात ही छोटी है, मैं आज भी सोच रही थी हम वेस्ट में रहने वालों के लिए कितना खूबसूरत मौका है लैलतुल कदर की रातों में जागने का। अगर 10 रातें हम जाग जाते हैं तो हमारा क्या बिगड़ता है? 1 घंटा सोते थे वो भी नहीं सोएंगे, बल्कि सो के उठना ज्यादा मुश्किल लगता है। तो लिहाजा नफिल लंबे कीजिए। इसमें करने का काम के कुरान, कसरत से कुरान पढ़ना, क्योंकि शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आप नफलों में जो कुरान पढ़ते हैं उसकी तो क्या ही बात है, सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आप हाफिज भी हैं, कुरान जुबानी भी याद है, कुरान खोल कर पढ़ें, आपकी आंखें भी लफ्जों को देखेंगी, आपको अच्छा भी लगेगा। और आप देखिए कि इस एक रात का एहतमाम सहाबा कराम और बाद वाले लोग कैसे करते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है बुखारी में 1901 नंबर की, फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब कदर में ईमान और इख्तसाब की नीयत यानी सवाब हासिल करने और ईमान के साथ क्याम किया, इसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। थोड़ा सा सोचिए, अपना कोई गुनाह याद करें, अभी भी दिल पे जिसका वो हो जाए, अभी भी याद आता है तो आप सोचते हैं बस इस पे अल्लाह ने ज़रूर पूछना है। बस ये रात इबादत की है, ईमान शर्त है और हसूल सवाब, कि अल्लाह सवाब देगा। इसी तरह इमाम शाबी, एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, कहते हैं कि लैलतुल कदर में सिर्फ रातें नहीं हैं, दिन भी हैं, यानी इसकी रातें इसके दिनों की तरह। और इमाम शाफी रहमहुल्ला कहा करते थे, मैं पसंद करता हूँ कि इन इन 10 दिनों की भी इबादत ऐसे ही करूं जैसे रातों को करता हूं। तो अब आप मुझे बताइए कि हमारे दिन भी इबादत में जाएंगे ना, कोशिश मेहनत के लिए हो। फिर इसी तरह हमारे असलाफ लैलतुल कदर का इस्तकबाल इस तरह करते जैसे कोई एक मुअज्जज मेहमान का इस्तकबाल करता। कल्बी तैयारी, जिस्मानी तैयारी, रूहानी तैयारी, जैसे आप मेहमान के आने से पहले सभी कुछ की तैयारी करते हैं ना, जगह भी साफ करते हैं, घर भी संवारते हैं, खाना भी बनाते हैं, अपने आप को भी साफ रखते हैं। तो वो किस तरह से साफ करते थे? वो कहते थे हम हर लिहाज से इस तरह फिट हों कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। इब्ने जरीर एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो हर रमज़ान की ऐसी आखिरी जो रात थी उसमें पहले गुसल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरी अपनी भी आदत है, मैं कभी इस जगह बैठती नहीं हूँ बगैर गुसल किए। क्यों? कैसे, जहन ही नहीं तैयार होता। तो अगर आज किसी ने नहीं किया, कल से रात की जो ही आप मगरिब ही के वक्त कर लीजिए, ताकि पूरे फ्रेश होके इसको हासिल करें। क्योंकि आप देखिए, जब हम गुसल करते हैं ना, थकन भी दूर हो जाती है, हमारा दिल भी साफ हो जाता है, कोई दिल पे बोझ है, गम है, कोई फीलिंग्स हैं, वो ख़त्म होती हैं। इसी तरह इमाम नुखई थे, आखिरी अशरे की हर रात को गुसल करते, اسلاف میں سے بعض وہ تھے جو راتوں میں غسل کرتے اور خوشبو لگاتے، جن راتوں کے متعلق یہ زیادہ امید ہوتی کہ شاید وہ لیلۃ القدر ہو، اس میں زیادہ اہتمام کرتے۔ اسی طرح سے ثابت البنانی ایک عالم تھے، کہتے ہیں کہ تمیم داری، صحابی تھے اللہ کے پیارے نبی کے، ان کے پاس ایک حلہ تھا، کپڑے ایک ڈریس تھا جو انہوں نے 1000 درہم میں خریدا تھا، یعنی بہت ایکسپینسو کپڑے تھے۔ فرمایا وہ اسے اس رات میں پہنتے جس میں ان کو امید ہوتی کہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، لوگ کپڑے پہننے میں وقت ضائع کر دیں۔ سچ بتائیے، موڈ چینج ہوتا ہے کہ نہیں؟ بو والے، پسینے والے، لہسن پیاز کی اسمیل والے کپڑے پہنے ہوتے عبادت میں مزہ آتا ہے؟ اور مجھے کسی خاتون کی یہ تو ریل کی بات یاد آ گئی کہ وہ آخری راتوں میں یا تہجد کے وقت اپنے سب سے خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، شادی کے کپڑے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل خوش ہو، کہتی تھی میں نے اللہ کے لیے پہنا ہے۔ اگر کوئی کپڑا آپ کی خوشبو میں رکاوٹ ہے تو مت پہنے، اور اسی کو پہن کے آپ کانشیس ہو گئے تو بالکل نہ پہنے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے۔